ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयम् उदीरयेत्। नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। मूकं करोति वाचालं पंगुं लंगयते गिरिं यत्कृपातमहं वंदे श्रीगुरुं दीनतारणं परमानंदमाधवं श्रीकृष्णचैतन्यदेवं। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवतम सातवां स्कंध दूसरा अध्याय श्लोक 47। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावल्लिंगान्वितो यात्मा तावत् कर्म निबंधनम् ततो विपर्ययः क्लेशो मायायोगोनुवर्तते। यावत् जब तक लिंग अन्वितः सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत ही निस्संदेह आत्मा आत्मा तावत् तब तक कर्म सकाम कर्मों का निबंधनम बंधन ततः उससे विपर्ययः उल्टा भ्रम से शरीर को आत्मा मानते हुए, क्लेशः कष्ट, माया योगः बहिरंगा भ्रामक शक्ति के साथ प्रबल संबंध, अनुवर्तते पीछा करता है। अनुवाद और तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा, श्रील प्रभुपाद की जय। जब तक आत्मा मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार से युक्त सूक्ष्म शरीर द्वारा आवृत रहता है, तब तक वह अपने सकाम कर्मों के फल से बंधा रहता है। इस आवरण के कारण आत्मा भौतिक शरीर से जुड़ा रहता है, अतएव उसे उसी के अनुसार जन्म जन्मांतर भौतिक दशाओं एवं उतार चढ़ावों को भोगना पड़ता है। तात्पर्य, जीव सूक्ष्म शरीर द्वारा बंधा हुआ है, जिसमें मन बुद्धि तथा मिथ्या अहंकार सम्मिलित रहते हैं। अतएव मृत्यु के समय मानसिक स्थिति अगले शरीर का कारण बनती है, जैसे कि भगवद गीता में पुष्टि हुई है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। मृत्यु के समय मन उस मानदंड को निर्धारित कर देता है जिससे आत्मा दूसरे प्रकार के शरीर में ले जाया जाता है। यदि जीव मन की आज्ञा का विरोध करता है और मन को भगवान की प्रेमा भक्ति में लगाता है तो मन उसे नीचे नहीं गिरा सकता। अतएव सारे मनुष्यों का कर्तव्य है कि मन को सदैव भगवान के चरण कमलों में संलग्न रखे। स वै मनः कृष्ण पदारविन्दयोः। जब मन कृष्ण के चरण कमलों में लगा रहता है तो बुद्धि विमल हो जाती है और उसे परमात्मा से प्रेरणा प्राप्त होती है। ददामि बुद्धि योगम तम। इस तरह जीव भव बंधन से मुक्ति की दिशा में प्रगति करता है। जीवात्मा सकाम कर्म के नियमों के अधीन रहता है, किंतु परमात्मा जीवात्मा के कर्म फलों को प्रभावित नहीं होते। जैसा कि वैदिक उपनिषद में पुष्टि हुई है, परमात्मा तथा जीवात्मा एक शरीर में बैठे हुए दो पक्षियों की तरह है। जीवात्मा शारीरिक कर्मों के फल खाकर सुख या दुख भोगता है, लेकिन परमात्मा ऐसे बंधन से मुक्त होने के कारण साक्षी बना रहता है और जीवात्मा की इच्छा अनुसार उसे कर्मों की अनुमति देता रहता है। श्रील प्रभुपाद की जय। तो मैं बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा सभी भक्तों को जो यहाँ पर आए हैं, और मैं धन्यवाद देना चाहूंगा असीम कृष्ण प्रभु जी को जिन्होंने मुझे अवसर दिया है भागवत के ऊपर कुछ कहने के लिए। श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कुछ आवश्यक बातें कहते हैं। वो सबसे पहली बात जो प्रभुपाद जी श्लोक के तात्पर्य में कहते हैं वो इस प्रकार है, मृत्यु के समय मन की जो मानसिक स्थिति है वो अगले शरीर का कारण बनती है। जो मृत्यु के समय हमारी मानसिक स्थिति रहती है वो अगले शरीर का कारण बनती है। भगवद गीता में पुष्टि हुई है, यम यम वापी स्मरण भावम त्यजत्यन्ते कलेवरम। तो मृत्यु के समय मन उस मानदंड को निर्धारित करता है जिससे आत्मा दूसरे शरीर में जाए। प्रभुपाद जी यहाँ पे बहुत अच्छी बात बताते हैं, क्योंकि हिरण्यकश्यपु जो है इस समय अपने भाई के सभी परिजनों को, हिरण्याक्ष के सभी परिजनों को बता रहे हैं, समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि किस प्रकार से उन्हें शोक नहीं करना चाहिए, ये समझाने की कोशिश की जा रही है। जैसा कि बाद में देखा जाएगा, इस प्रकार का ज्ञान जो है हिरण्यकश्यपु के कोई काम नहीं आएगा। बाद में हिरण्यकश्यपु यथा पूर्ववत है वैसे ही हो जाएगा, जैसे पहले थे वैसे ही हो जाएंगे। उनके अंदर ये ज्ञान का जो है कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उनके इस कहने का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। उसका कारण यह है कि जो भी ज्ञान कहा जाए लेकिन भगवान हरि के ज्ञान से उसका संबंध नहीं हो, वो ज्ञान अंततः निष्फल होता है। अंततो गत्वा वो ज्ञान जो है निष्फल होता है। इसका प्रमाण भी मैं बाद में दूंगा, लेकिन पहले इतना कहना चाहूंगा कि हिरण्यकश्यपु जो है वो अपने परिवार को समझाने की कोशिश कर रहा है कि किस प्रकार से शोक नहीं करना चाहिए। प्रभुपाद जी इसमें एक चीज बहुत अच्छी कहते हैं कि मन को हमें भगवान की भक्ति में लगाए रखना है। बाकी इंद्रियों को तो है ही, लेकिन मुख्य रूप से मन को लगाए रखना है। इस बात को यहाँ पे प्रभुपाद जी कहते हैं। ये मन को क्यों लगाए रखना है? ये मन को इसलिए लगाए रखना है क्योंकि मन सभी इंद्रियों में सबसे सर्वोपरि है। भगवान भगवद गीता में कहते हैं मन षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थानी कर्षते। मन षष्ठानि इंद्रियाणि मतलब मन षष्ठ येषां ते इंद्रिया, मन छठवा है इंद्रिया, पांच इंद्रिया रहती है, आंख कान नाक जिह्वा स्पर्श, इसमें ये पांच मुख्य इंद्रियां हैं। और ये पांचों इंद्रियां जो है ये मनो का मन का आश्रय ग्रहण करती है, मतलब ये मन के आश्रित रहती है। इसलिए मन को भक्ति में लगाना बहुत आवश्यक है। सभी इंद्रियों को तो लगाना आवश्यक है ही, पर सभी इंद्रियां जो है ये मन के केंद्र बिंदु के ऊपर ही स्थित है। मन ही इन सभी इंद्रियों का केंद्र बिंदु है। भगवद गीता में भगवान एक और चीज कहते हैं इंद्रियाणाम मनश्चास्मि, सभी इंद्रियों में मैं मन हूं। इसलिए मन को भगवत भक्ति में लगाना अत्यंत आवश्यक है। जो मन को नहीं लगा सकते भगवत भक्ति में, वो भगवत भक्ति करना फिर संभव नहीं है। इसका क्या प्रमाण है कि मन को लगाना चाहिए भगवत भक्ति में? बाकी इंद्रियों को तो लगाना ही चाहिए, सबसे पहले मन को लगाने की कोशिश करनी चाहिए। क्या प्रमाण है इसका? सर्वोपरि मन है। इसका प्रमाण रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में देते हैं। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित सर्व विधि निषेधस्युर एतयोरेव किंकरा। मतलब स्मर्तव्य सततम विष्णुर, हमेशा भगवान विष्णु का स्मरण करो। विस्मर्तव्य न जातुचित, कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं, ये मन का कार्य है। सर्व विधि निषेधस्युर एतयोरेव किंकरा, सारे विधि और निषेध जो है इस नियम के अधीन है, सारे विधि और निषेध इस नियम के अधीन। जैसे प्रभुपाद जी कहते थे ऑलवेज रिमेम्बर कृष्णा नेवर फॉरगेट कृष्णा, ये मन का काम है, ये और किसी इंद्रिय का काम नहीं, ये मन का काम है। सारे बाकी के विधि और निषेध जो है ये इस नियम के अंतर्गत आते हैं कि विष्णु का हमेशा स्मरण करें और विष्णु को कभी भूले नहीं। इसलिए वैष्णव कई बार कहते हैं भक्ति मन प्रधान कार्य है, मन प्रधान कार्य। इसमें भगवान की भक्ति में सर्वोपरि मन लगना आवश्यक है। मन न लगने से धीरे धीरे बाकी इंद्रियां भी हट जाती है भगवान की भक्ति से, और मन लगने पे धीरे धीरे सारी इंद्रियां भगवान की भक्ति पे स्थापित हो जाती है। प्रभुपाद जी उसी के लिए एक और प्रमाण भी देते हैं। सवई कृष्ण सवई मनः कृष्ण पदारविंदयो, अंबरीश महाराज जी का उदाहरण देके प्रभुपाद जी कहते अंबरीश महाराज जी ने मन को भगवान की सेवा में लगाया था। मनः कृष्ण पदारविंदयो, तो इस श्लोक में प्रभुपाद जी विशेष रूप से मन के बारे में कहते हैं कि अपने मन को कृष्ण की सेवा में लगाना चाहिए। जय श्री श्री राधा रास बिहारी की जय। तो विशेष रूप से कहते हैं कि मन को लगाना चाहिए, क्योंकि यही सबसे सर्वोपरि विधि है। स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्य न जातुचित। अब इसमें एक बहुत बड़ा प्रश्न है। प्रश्न यह है कि जब पहले कह दिया स्मर्तव्य सततम विष्णुर, विष्णु का स्मरण करो, तो उसमें तो अपने आप आ गया कि विस्मर्तव्य न जातुचित। इसमें पहले ही है कि भूलना नहीं है, जबकि पहले ही कह दिया हमेशा विष्णु का स्मरण करो, तो अलग से कहने की क्या जरूरत है कि विष्णु को भूलो नहीं। इतना कह देना काफी था कि स्मर्तव्य सततम विष्णुर। ये अलग से क्यों कह दिया श्रील रूप गोस्वामी ने विस्मर्तव्यो न जातुचित, इनको भूले नहीं विष्णु को। तो उसका उत्तर जो है वो इस प्रकार है कि जो भी वेदों में कर्म दिए गए हैं वो कर्म वास्तव रूप में चार प्रकार के होते हैं। उसमें से एक कर्म होता है नित्य कर्म, दूसरा कर्म होता है नैमित्तिक कर्म, तीसरा कर्म होता है काम्य, और चौथा होता है निषिद्ध। नित्य कर्म मतलब जो हमें रोज करना चाहिए, हमेशा करना चाहिए, जैसे संध्या वंदन, तीन बार गायत्री कहना, स्नान करना, ये जो सब वैदिक कर्म है ये नित्य है। इनको करेंगे तो ऐसा नहीं है कि कोई बहुत बड़ा लाभ होगा, पर नहीं करेंगे तो हानि होगी। नित्य कर्म इस तरह से होता है, करेंगे तो ऐसा नहीं है कि आपको तुरंत बहुत बड़ा लाभ होगा, पर नहीं करेंगे तो हानि होगी, ये नित्य कर्म है। दूसरा होता है नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक मतलब जो एकाध बार किया जाता है जीवन में, जैसे कि संस्कार, किसी का उपनयन संस्कार करे, किसी का विवाह संस्कार करे, ये नैमित्तिक होता है, जब निमित्त या प्रसंग आने पे ये कर्म किया जाता है, अन्यथा नहीं किया जाता। तीसरा होता है काम्य कर्म। काम्य मतलब कोई इच्छा उत्पन्न हो जाए तो उस इच्छा को पूरा करने के लिए कोई कर्म जो किया जाए उसको काम्य कर्म। जैसे किसी को पुत्र की इच्छा हो जाए तो पुत्रेष्टि यज्ञ करे। इच्छा होने पे जो कर्म किए जाते हैं इसको काम्य कर्म कहते हैं। और चौथा जो है वो है निषिद्ध, मतलब जो नहीं करना है। ये ऐसा कर्म है निषिद्ध कर्म, मतलब जो नहीं करना, अगर इसको करेंगे तो पाप लगेगा और नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। नहीं करेंगे तो ऐसा नहीं है कि पुण्य लगेगा, नहीं करेंगे तो कुछ नहीं होगा। भक्ति कौन सा कर्म है? क्या भक्ति नित्य करना चाहिए या भक्ति नैमित्तिक करना चाहिए, या भक्ति काम्य है या भक्ति निषिद्ध है? निषिद्ध तो नहीं हो सकते। तो भक्ति नित्य है मतलब हमेशा करनी चाहिए, भक्ति नैमित्तिक है कभी कभी करनी चाहिए, या भक्ति काम्य है जब इच्छा हो तब करनी चाहिए? तो इसका उत्तर यह है कि भक्ति नित्य कर्म है। पर नित्य कर्म वो होते हैं जिनको कर लेने से तुरंत कोई विशेष फल की प्राप्ति नहीं होती, पर नहीं करने से प्रत्यवाय, मतलब नहीं करने से विपरीत फल आता है। इसलिए स्मर्तव्य सततम विष्णुर, ये तो ठीक है आपका नित्य कर्म है कि आपको भगवान का स्मरण करना है, विस्मर्तव्य न जातुचित, और ये ध्यान रखिए कि भूले नहीं, भूलने से विपरीत परिणाम होगा। जैसे कोई कह दे हमको सभी पुलिस वालों का आदर करना चाहिए और कभी उनका अनादर नहीं करना चाहिए। आदर करेंगे तो ऐसा नहीं कि आपको कोई पारितोषिक देंगे, कुछ होगा नहीं आपको, और अनादर करेंगे तो जरूर कुछ हो जाएगा। ये उस प्रकार का स्टेटमेंट है, स्मर्तव्यो सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित। विष्णु का स्मरण तो करें और ये ध्यान रहे कि कभी भूले नहीं, भूलने से विपरीत परिणाम होगा, इससे जीव की घोर दशा होती है भौतिक संसार में। इसमें भी यदि कोई कहे कि 24 घंटा तो हम स्मरण नहीं कर सकते तो इसका क्या उपाय है? तो ये जो श्लोक लिखा है श्रील रूप गोस्वामी ने, स्मर्तव्य सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, उसकी व्याख्या में श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ये लिखते हैं, सततम मतलब प्रति अहम, दिन में एक बार, कम से कम दिन में एक बार, साधक भक्तों के लिए इतना काफी है, जो साधन कर रहे हैं उनके लिए इतना काफी है, दिन में एक बार, मिनिमम दिन में एक बार। अर्थ यह है कि ऐसा एक दिन ना गुजरे जब हमको भगवान की याद नहीं आए। क्यों? हर क्षण नहीं, तो विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर बोलते साधक के लिए संभव नहीं है इस समय हर क्षण याद करना, इस समय संभव नहीं है। और यदि ये बोलोगे हर क्षण, साधक को भी हर क्षण करना चाहिए, तो वो अपने ही आचार्य का नियम पालन नहीं कर पाएगा। तो श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर कहते हैं यहां पे कि स्मर्तव्य सततम मतलब स्मर्तव्यम प्रति अहम, दिन में एक बार स्मरण करना है कम से कम साधक ने, वो भी अनुकूल रूप से। विस्मर्तव्यो न जातुचित, ऐसा एक भी दिन न हो जब भूल जाए हम। बाकी सारे विधि और निषेध इसके अंतर्गत आते हैं। पर जो भक्त भक्ति में अच्छे हैं, जो प्रगति कर चुके हैं, उनके लिए ये नियम नहीं है, उनको सभी समय याद करना चाहिए। जो भक्ति में आगे बढ़ना चाहते हैं वो सभी समय स्मरण करें। स्मरण करना भगवान का ये कोई आडंबर नहीं है, इसमें किसी प्रकार एक कृत्रिम प्रयोग नहीं है, आर्टिफिशियल नहीं है, कृत्रिम प्रयोग नहीं है, इसको धीरे धीरे आता है। तन्नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे तद अनुराग जनानुगामी कालम नयेदखिलमित्युपदेश सारम। तन नाम, वो भगवान के जो नाम है, रूप उनका जो रूप है, चरित उनके जो लीलाएं हैं, आदि सुकीर्तन अनु स्मृत्य, ये इसके अच्छे कीर्तन से बार बार स्मरण करना है। और कैसे स्मरण करना है? स्मृत्यो क्रमेण, इसी क्रम से, पहले नाम स्मरण करना है, फिर रूप स्मरण करना है, फिर चरित्र स्मरण करना है, अनुस्मरण करना है, बार बार करना है। स्मृत्यो क्रमेण, और स्मरण कैसे करना है, दो चीजों को उसमें जोड़ना है। रसना मनसी नियोज्य, पहले रसना यानी जीव को, और मनसी मन को नियोज्य, उसमें नियोजित करना है। भगवान का स्मरण करना ये हम सबके लिए आवश्यक है। यदि कोई कहे कि मैं सिर्फ जप करूंगा लेकिन मन को उसमें जोड़ूंगा नहीं, बिना मन को जोड़े जप करूंगा, सिर्फ वाचा मात्र से उच्चारण करूंगा, तो ठीक है, उसको वो जप करने का सुकृति मिलेगा, पर पूर्ण फल तभी मिलेगा जब वो मन को जोड़े, पूर्ण फल तभी मिलेगा जब मन को जोड़े। भक्ति मन प्रधान है, इसमें भक्ति में मन को जोड़ना बहुत आवश्यक है। इसलिए रूप गोस्वामी अगले श्लोक में कह देते हैं, इत्यसौ स्याद् विधिर नित्यम सर्व वर्णाश्रमादिषु। ये जो विधि मैं बता रहा हूं कि स्मर्तव्यम सततम विष्णुर विस्मर्तव्यो न जातुचित, ये नित्य विधि बता रहा हूं, नैमित्तिक नहीं है, नित्य विधि है। सारे वर्णों और आश्रमों के लिए, चाहे कोई शूद्र हो, ब्राह्मण हो, क्षत्रिय हो, वैश्य हो, ब्रह्मचारी हो, सन्यासी हो, वानप्रस्थ हो, गृहस्थ हो, चाहे अनाश्रमी भी हो, शास्त्रों में कहा जाता है अनाश्रमी नहीं रहना चाहिए, किसी आश्रम को ग्रहण करना चाहिए, अनाश्रमी भी हो वो व्यक्ति भी, उसके लिए नित्य नियम है भगवान को हमेशा स्मरण करें, कभी भूले नहीं। भूलने से क्या होता है, इसको चैतन्य चरितामृत में श्रील कृष्णदास कविराज गोस्वामी बोलते हैं, कृष्ण भूली सही जीव अनादि बहिर्मुख, अतएव माया तार दई संसार दुख। कृष्ण भूली, कृष्ण को भूलने से सही जीव, ये जो जीव है अनादि बहिर्मुख, ये बहिर्मुख हो जाता है। अतएव इसलिए माया जो है उसको संसार के दुख देती है, इसलिए माया उसको संसार के दुख देती रहती है पुनः पुनः। इस प्रकार की भक्ति करने के लिए यदि कोई सच में भगवान की भक्ति में अपना मन लगाना चाहे तो ये जो भक्ति है इसमें किसी भी प्रकार का कैतव या धोखाधड़ी नहीं हो सकती। बाकी सब इंद्रियों से चाहे तो कोई भले धोखाधड़ी करके भगवान के सबके सामने आडंबर करे, लेकिन मन के साथ धोखाधड़ी नहीं हो सकती। मन जो है जिस प्रकार से है उसी प्रकार से हमको बना देगा। इसलिए जो भजन करना चाहते हैं भगवान का, उनको ये चाहिए कि निष्कपट भजन करें। प्रचार तो करना है सभी भक्तों को, प्रचार करने के साथ भजन करना परम आवश्यक है। भजन निष्कपट हो इसके लिए ये देखना चाहिए कि भजन में कोई आडंबर तो नहीं है। आडंबर मतलब जो स्थान में आवश्यक न हो वहां पे अपनी किसी प्रकार से वैष्णव शक्ति प्रदर्शित करना, इसको आडंबर कहते हैं। इस प्रकार के आडंबर सहित भक्ति से बचना चाहिए। किसी में व्याख्यान करने की शक्ति होती है, किसी में कोई सेवा करने की शक्ति होती है। अलग अलग भक्तों में भगवान ने अलग अलग शक्तियां दे रखी हैं। इन शक्तियों को बिना कारण सिर्फ अपनी प्रतिष्ठा के लिए प्रकाशित ना करना, यह आडंबर नहीं करना। यह आडंबर करने से शक्ति शक्ति चली जाती है, व्यक्ति शक्तिहीन हो जाता है। इसलिए भक्त को चाहिए कि भक्ति का पालन करे पर उसको अपने हृदय में गूढ़ भाव से रखे, उसको सबके सामने प्रकाशित ना करे। भक्ति में आगे बढ़ने पर व्यक्ति को अनेक प्रकार के भगवान के साथ, जब वो भगवान को देखता है उसको अनेक प्रकार के अनुभव होते हैं। अनेक प्रकार के अनुभव होने से उसको कभी कभी रोना आता है या कभी कभी उसका रोमांच हो जाता है, पर इस सब को भक्त को रोक के रखना चाहिए। सबके सामने प्रदर्शन करने से शक्तिहीन हो जाती है। उसका उदाहरण भी है, पूर्व काल में बड़े बड़े विद्वानों ने जिन जिन्होंने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और आडंबर दिखाया, उनके शक्तिहीन हो गई है। इस बारे में कथा है, उज्जैन में बहुत बड़े महापंडित हुए, इनका नाम था श्री हर्ष। इनके पिताजी उज्जैन के राज्यसभा में पंडित थे। इस सभा में पंडित होने के कारण अनेक अनेक पंडित आते थे। एक बार कश्मीर से पंडित आए, उनका नाम था उदयन। उदयन ने श्री हर्ष के पिताजी को शास्त्रार्थ में हरा दिया, तो राजा ने श्री हर्ष के पिताजी को सेवा से निवृत्त कर निकाल दिया। तुम नहीं हरा सके ये कश्मीरी पंडित को, तो निकाल दिया। तो जब श्री हर्ष के पिताजी घर पे आए और उन्होंने बोला मुझे आज सेवा से निकाल दिया गया है, तो श्री हर्ष को बहुत क्रोध हुआ। उदयन वैष्णव थे, वैष्णव होने के बावजूद उन्होंने ये कार्य किया, शक्ति प्रदर्शन किया, दूसरों को हराने की चेष्टा की। तब श्री हर्ष बड़े मायावादी थे, उन्होंने फैसला किया मैं उदयन को जाकर हराऊंगा, मैं हराऊंगा इसे, इनको बहुत अभिमान है अपनी शक्ति का, मैं हराऊंगा इनको। श्री हर्ष ने 15 वर्ष अध्ययन किया काशी में, वो भी 5 गुरुओं के सानिध्य में। तब श्री हर्ष इतने पारंगत हो गए कि जो सुनते थे उसको धर लेते थे, श्रुतिधर हो गए। फिर कश्मीर गए श्री हर्ष। कश्मीर जाने पर वहां राज्यसभा में गए तो लोगों ने निकाल दिया उनको, बोले तुम कौन हो, हम नहीं जानते, बाहर जाओ, हम तुमको अंदर नहीं आने देंगे। तो श्री हर्ष कश्मीर में उस समय एक जगह पर बैठ के तपस्या कर रहे थे, वहां पे पास में कुछ दो स्त्रियों का झगड़ा हो गया। वो झगड़ा इतना बढ़ गया कि राज दरबार में पहुंच गया। वो राज दरबार में पहुंचने पे राजा ने पूछा, वहां पे कोई और था जिसने आपका झगड़ा देखा? उदे होगा तो कोई साक्षी तो सुलझाएंगे झगड़ा। तो बोले हाँ, एक पंडित था वहां पे, हाँ बुलाओ। तो श्री हर्ष को बुलाया गया। तो श्री हर्ष फिर राज्यसभा में आए। आने के बाद श्री हर्ष से पूछा गया, ये दोनों क्या बात कर रहे थे, क्या झगड़ा हुआ? तो श्री हर्ष बोले, देखिए मुझे तो आपकी बोली नहीं आती, आप कश्मीरी लोग, मुझे आपकी बोली नहीं आती, ये लोग क्या कह रहे थे वो मैं समझ नहीं पाया, लेकिन जो कह रहे थे वो जैसा कह रहे थे वैसा सुना देता हूं, जो कह रहे थे जैसा वैसा सुना देता हूं आपको। तो श्री हर्ष ने एज इट इज सुना दिया, बोला इसका अर्थ मुझे नहीं मालूम, जो सुना मैंने बता देता हूं आपको। उस समय सभा में उदयन उपस्थित थे और श्री हर्ष जाते जाते बोले उदयन को, तुमने मेरे पिताजी का अपमान किया है, कल तैयार रहना, मैं तुमसे शास्त्रार्थ करने आऊंगा, और अगर मैं हार गया तो मैं नाम का मायावादी नहीं। तो उदयन फिर भी समझे नहीं। अगले दिन जब श्री हर्ष आए तो उदयन मजाक उड़ाने लगे श्री हर्ष का, बोले गौर आगत गौर आगत गौ आगत, ये देखो गाय आ गई, ऐसे मतलब गाय के समान जिसकी बुद्धि है, क्योंकि गाय को कोई शास्त्रों की बुद्धि नहीं रहती, तो गाय के समान मेरा मूर्ख व्यक्ति आ गया, गौर आगत ऐसा बोले उदयन। तभी श्री हर्ष ने एक ही श्लोक बोल के उनको उसी समय परास्त किया, एक श्लोक, और बोलने की जरूरत नहीं पड़ी, एक श्लोक बोल के परास्त किया। किम गवि गोत्वम उता गवि गोत्वम यदि गवि गोत्वम मई नहीं तत्वम अगविच गोत्वम यदि भवदिष्टम भवतु भवत्यपि संप्रति गोत्वम, ये बोल के परास्त किया, एक श्लोक बोल के। किम गवि गोत्वम, कहते मैं गाय हूं, किम गवि गोत्वम, क्या गाय होना ये गोत्व यानी गाय की क्वालिटी ये सिर्फ गाय में होती है? किम गवि गोत्वम, ये सिर्फ गाय में ही गायपना होता है? उत आ गवि गोत्वम, या गाय से भिन्न प्राणियों में भी गायपना होता है? यदि गवि गोत्वम, यदि सिर्फ गाय में ही गायपना होता है, मई नहीं तत्वम, क्योंकि मैं तो गाय नहीं हूं, मैं तो मनुष्य हूं, तो मुझ में नहीं हो सकता, इसलिए खंडन। अगविच गोत्वम, यदि ऐसा कहो कि गाय से भिन्न वस्तुओं में भी गायपना होता है, यदि भवदिष्टम, यदि ऐसा कह रहे हो, भवतु भवत्यपि संप्रति, तो तुम में भी वह गायपना है। इसका उत्तर उदयन नहीं दे पाए, उस समय उदयन हार गए, वैष्णव होते हुए भी हार गए। इससे हमको सीख मिलती है कि इस प्रकार शक्ति का प्रदर्शन नहीं करना चाहिए, यदि हम वैष्णव है तो भजन पे ध्यान देना चाहिए। उससे श्रीहर्ष को विपरीत परिणाम हुआ, क्योंकि उदयन जो है ये कश्मीर के राजा, कश्मीर के जो पटरानी थी, उदयन के ऊपर मतलब वो खुश थे। तो उदयन जब हार गए तो कश्मीर के पटरानी को बहुत दुख हुआ, और फिर कश्मीर के पटरानी ने जगह जगह से अनेक विद्वान बुला के श्री हर्ष के खिलाफ लड़ा दिए। जीवन के अंत में श्री हर्ष किसी एक जगह पे जाके जहां पे कोई नहीं है, ऐसी जगह पे जाके उन्होंने व्यतीत किया, बहुत महापंडित होते हुए भी। तो ये जो है इस प्रकार से, इसलिए कहा जाता है भक्ति मन प्रधान है, बाकी इंद्रियां तो है इसमें पर मन प्रधान है, मन लगाने से भक्ति ठीक से होगा, पर यदि अन्यथा व्यर्थ यदि शक्ति ह्रास करेंगे तो फिर भक्ति नहीं कर पाएंगे। ये जो ज्ञान हिरण्यकश्यप दे रहे हैं ये ठीक है, अच्छी बात है, पर ये ज्ञान जो है बाद में काम इसलिए नहीं आएगा क्योंकि इसका भगवान से कोई संबंध नहीं है। नारद मुनि कहते हैं व्यास देव जी को, निष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम् न शोभते ज्ञानमलम् निरञ्जनम् कुतः पुनः शश्वत भद्रमीश्वरे न चार्पितम् कर्म यदप्यकारणम्। निष्कर्म्यमप्यच्युत भाववर्जितम्, ये जो आपका निष्काम कर्म और आपने जो ज्ञान के बारे में बताया है व्यासदेव, न शोभते, शोभा नहीं प्राप्त करता। अच्युत भाव वर्जितम, इसमें भगवान से कोई जुड़ा हुआ ज्ञान नहीं है, अच्युत भाव से वर्जित है। ये हिरण्यकश्यपु का ज्ञान भी इस तरह है, आत्मा है ठीक है, एक दिन है चले जाएंगे, ये नहीं कहेंगे कि आत्मा हरि का दास है, हिरण्यकश्यपु तो नहीं कहेगा, तो परम शत्रु है भगवान का, इसलिए नहीं कहेगा कि आत्मा जो है हरि का दास है। इस प्रकार का ज्ञान जो भगवान से संबंध नहीं रखता, वो ज्ञान कोई काम नहीं आता। नारद मुनि पहले कह चुके हैं भागवत में। स्मरण करने के लिए व्यक्ति में कुछ योग्यता होनी चाहिए, हर कोई व्यक्ति स्मरण नहीं कर सकता, इसलिए जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में कि नाम संकीर्तन और स्मरण, इनमें एक भेद है कि नाम संकीर्तन के लिए कोई योग्यता विशेष नहीं है, पर स्मरण करने के लिए योग्यता है। नाम संकीर्तन करने के लिए कोई योग्यता की आवश्यकता, हर कोई भी नाम संकीर्तन कर सकता है, इसमें कोई योग्यता का प्रश्न नहीं। स्मरण करने के लिए अवश्य योग्यता का प्रश्न है। वो स्मरण करने के लिए योग्यता कैसी चाहिए? जिसका मन धुल गया हो अच्छे से सभी पापों से, वो व्यक्ति ध्यान से स्मरण कर सकता है। जिसका मन नहीं धुला हो वो स्मरण नहीं कर सकता, ये जीव गोस्वामी कहते हैं भक्ति संदर्भ में। इसका अर्थ ये नहीं है कि हम नहीं करेंगे, क्योंकि हमको उस चीज के लिए प्रयास करना है कि हमारा मन धुल जाए और हम स्मरण कर पाए। तम नाम रूप चरितादि सुकीर्तनानु स्मृत्य हो, स्मरण करना है, स्मृत्य हो क्रमेण, रूप गोस्वामी बोलते हैं स्मृत्यो क्रमेण रसना मनसी नियोज्य तिष्ठन व्रजे, व्रज वृंदावन धाम में रह के तद अनुरागी जनानुगामी, वृंदावन धाम के जो अनुरागी जन है यानी जो प्रेमी भक्त है अनुगामी, उनका अनुगामी बनना है। कालम नयेत, इस प्रकार से अपना काल व्यतीत करना है। अखिलम इति उपदेश सारम, सभी उपदेशों का सार बताता हूं, जो सभी उपदेशों का सार बताया उसमें बताया कि स्मरण करना है। जीव गोस्वामी बताते हैं भक्त पांच प्रकार से स्मरण करते हैं भगवान का। सबसे पहले बताते हैं कि साधारण स्मरण करते हैं, जो कुछ याद आ जाए अपने आप बहुत आसानी से उसको साधारण स्मरण कहते हैं। भगवान के बारे में जो याद आ जाए साधारण रूप से उसको साधारण स्मरण कहते हैं। दूसरा होता है धारणा, धारणा मतलब भगवान में विशेष रूप से प्रयास करना मन लगाने का, विशेष रूप से, जो सहज रूप से स्मरण आ जाए वो तो अलग है, पर विशेष रूप से प्रयास करना इसको धारणा कहते हैं। तीसरा है ध्यान, ध्यान मतलब किसी विशेष रूप के भगवान के लीला का स्मरण करना, इसको ध्यान कहते हैं। जैसे कोई कोई भगवान के वात्सल्य लीला से प्रभावित रहते हैं भक्त, तो भक्ति रसामृत सिंधु में दिया है साधक को चाहिए कि उन लीलाओं को बार बार पढ़े, क्योंकि जब तक इनको पढ़ेंगे नहीं तब तक भगवान स्मरण नहीं होगा। मृत्यु के समय स्मरण परम आवश्यक है। अंते मति सा गति, जो अंत में मति है वही हमारी गति है, इसलिए भजन ये स्मरण के ऊपर बहुत निर्भर है। यदि कोई कहे कि हाँ मैं अंत में भगवान का नाम तो ले लूंगा, पर यदि मन विषयों में ही आसक्त रहे तो पुनर्जन्म लेने के बहुत संभावना है, इसलिए मन जो है भगवान की भक्ति में लगाना है। तो ध्यान मतलब किसी विशेष लीला के स्मरण करना, वो भी गुरु से श्रवण करने के बाद, ये सिर्फ पुस्तक पढ़ने से नहीं होता है, गुरु से श्रवण करने के बाद। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु श्रद्धान्वितान् शृणुयादथ वर्णयेद्यः भक्तिं परां भगवतीं प्रतिलभ्य कामान् हृद्रोगमाश्वपहिनोत्य चिरेण धीरः। सबके हृदय में एक रोग रहता है, इस रोग को काम कहते हैं। ये काम रोग जो है इसको हटाने का तरीका व्यासदेव जी भागवतम में बताते हैं। विक्रीडितं व्रजवधूभिरिदं च विष्णु, ये जो गोपियों ने विष्णु यानी हरि के साथ जो लीला किया जिसको रास लीला कहते हैं, श्रद्धान्विता श्रद्धा के साथ, अनुशृणुयाद बार बार सुने गुरु के मुख से, अथ वर्ण ये द्यः पश्चात बार बार वर्णन भी करें, भक्तिम पराम भगवतीम प्रतिलभ्य काम, इससे पराभक्ति प्राप्त होगी भगवान में। हृद्रोगम, और ये जो हृदय का रोग है, आशु अपहनोति, ये जल्दी भाग जाएगा, अचिरेण धीर जल्दी भाग जाएगा। लेकिन इसमें परम आवश्यक है कि गुरु के मुख से श्रद्धा के साथ सुनना चाहिए। जो इस लीला को प्राकृत समझता है उसके लिए ये हानि करेगा, पर जो श्रद्धा से गुरु मुख से सुनता है उसको ये लाभ करेगा, उसके हृदय का रोग दूर होगा। उसके बाद जीव गोस्वामी बताते हैं, धीरे धीरे व्यक्ति ध्रुवानुस्मृति, मतलब अखंड स्मरण होता है व्यक्ति को भगवान की लीलाओं का, अखंड स्मरण होता है, और इसी में सबसे अंतिम समाधि रहती है। इसमें भगवान का स्मरण तो अखंड होता है और बाकी चीजों का विस्मरण हो जाता है। इस प्रकार से समाधि होने पे जब व्यक्ति भगवान अंत समय में भगवान को याद करता है, अवश्य भगवान के धाम को प्राप्त करता है। अंत में प्रभुपाद जी एक चीज कहते हैं जो कि बहुत अच्छा है, वो ये कहते हैं कि जीव जो है और परमात्मा जो है पेड़ पे बैठे हुए दो पक्षियों की तरह है। ये श्वेताश्वतर उपनिषद से लिया हुआ प्रसंग है। द्वासुपर्णा सयुजा सखाया समानम वृक्षम परिशस्व जाते तयोरन्यो पिप्पलम स्वाद्यथि अनश्नन अन्यो बिचाकशीति। श्वेताश्वतर में इस प्रकार से द्वासुपर्णा दो पक्षी है, सयुजा सखाया सखा है, समानम वृक्षम एक ही वृक्ष पे परिशस्व जाते बैठे हैं, तयोरन्यो उनमें से एक पिप्पलम स्वादयति पिप्पल का फल खाता है। मतलब बताया गया है कि वृक्ष पिप्पल का है, पिप्पलम स्वादयति पिप्पल का फल खाता है। फल कड़वा या मीठा दोनों होता है, जैसे कर्मों का फल कड़वा भी होता है मीठा भी होता है। अनश्नन अन्यो बिचाकशीति, और दूसरा देखता है, पिप्पल का वृक्ष बताया, ये वही वृक्ष है जो भगवत गीता में 15वें अध्याय में बताया गया है। ऊर्ध्वमूलम अधःशाखम अश्वत्थम प्राहुर अव्ययम छंदांसी यस्य पर्णानि यस्तम वेद स वेदवित्। ऊर्ध्वमूलम मूल ऊपर की तरफ, अधःशाखम शाखाएं नीचे की तरफ, अश्वत्थम ये पीपल का पेड़, अश्वत्थ मतलब पीपल का पेड़, प्राहुर अव्ययम ये अव्यय है, कभी बदलता नहीं, एज इट इज रहता है। छंदांसी यस्य पर्णानि वैदिक स्त्रोत इसके पत्ते हैं। ये जो संसार बना है, अखंड संसार बना है, ये सिर्फ वेदों के वजह से है। जो भी संसार में दिखाई देता है, ये जो हम कर्म क्रियाएं करते हैं, ये सब वेदों के ज्ञान पे निर्भर है सबका सब। यदि कोई कहे नहीं नहीं मैंने तो नहीं पढ़ा, मैं तो इंजीनियरिंग पढ़ा हूं, मैं वेद नहीं पढ़ा हूं, आपको जो भी विद्या है ये विद्या भी वेदों से हुई है। इसका क्या प्रमाण है? इसका प्रमाण ये है, किसी भी विद्या को हासिल करने के लिए शब्द विद्या आवश्यक है। जो शब्द उच्चारण करना नहीं जानता, ये कोई शब्द उच्चारण करना नहीं जानता, कोई विद्या ग्रहण नहीं कर सकता, और ये शब्द विद्या वेदों से सीखी जाती है। बाकी भाषाओं में भी शब्द है, पर जैसे वेदों में दिए हैं शब्द वैसे नहीं है। क ख ग घ कंठ से निकलने वाले, च छ ज झ तालु से निकलने वाले, ट ठ ड ढ मूर्धा से निकलने वाले, प फ ब भ होंठ से निकलने वाले, सब एक साथ बिठा के रखे, व्यवस्थित है। बाकी सभी भाषाओं में इस भाषा को देखकर लिया गया है। सभी भाषाओं की मूल भाषा कौन सी है? संस्कृत। इसलिए जो वे ज्ञान हुआ है आपको, सब वेदों के ज्ञान से हुआ है। ये बात। यस्तम वेद, जो जानता है इस वृक्ष को, स वेदवित, वो वेदों का ज्ञाता है, वो काट सकता है इसको। बाद में भगवान बताते हैं काटने के लिए जो है भक्ति योग करना होगा। मैं पुरुषोत्तम हूं, मुझ पुरुषोत्तम की शरण आके, ऐसा भगवान बोलते हैं, मैं पुरुषोत्तम हूं, मुझ पुरुषोत्तम की शरण आके फिर वृक्ष का छेदन करना होगा। भले ही शुरुआत में पहले श्लोक में भगवान कह देते हैं जो उसको जानता है वो वेदवित है, मतलब वेदों का ज्ञाता है, बाद में भगवान ये कहते हैं कि वास्तव में वो वृक्ष को कोई नहीं जानता। कभी कहते हैं भगवान, सर्वस्य चाहम हृदि सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैर अहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेदविदैव चाहम वेदविद एव चाहम अहम च वेदवित न कोऽपि अन्यत्। मैं जानता हूं वेदों को और कोई नहीं। यस्तम, पहले श्लोक में कहते हैं यस्तम वेद स वेदवित, जो जानता है वो वेदों का वेता है, और बाद में कहते हैं कि मैं ही जानता हूं और कोई नहीं। तो जो जानता है वो छेदन कर सकता है, बाद में आप कहते हो कोई नहीं जानता, आप ही जानते हो, तो आप ही छेदन करो इसका, इस वृक्ष का छेदन आपकी कृपा से हो। इस तरह से प्रभुपाद जी यहां पर बताने की कोशिश करते हैं। तो इसमें और बहुत सारे विषय है, लेकिन एक चीज इसमें यह है कि हिरण्यकश्यपु ये सब बताने के बाद भूल जाएगा। बाद में हिरण्यकश्यपु जो है फिर विष्णु के ऊपर विष्णु को मारने के लिए प्रयास करेगा। बाद में ये भी बोलेगा विष्णु जिस लोक में रहता है वो वैकुंठ भी शाश्वत नहीं है, उसका भी नाश हो जाता है। तो जब वैकुंठ का नाश होता है तो मैं तो अवश्य हरि का नाश करूंगा, ऐसा बाद में हिरण्यकश्यपु कहेगा। तो ये सब प्रसंग बाद में आएगा। फिलहाल इसमें प्रभुपाद जी ने जितना बताया उसको मैंने यथाशक्ति समझाने का प्रयास किया। इसमें कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया क्षमा कर दीजिएगा। जय श्री प्रभुपाद।
हरे कृष्ण। प्रभु जी, आपने पूरा लेक्चर में जो मन के बारे में जो विवरण किए हैं और फिर भगवद गीता में जो मन का उदाहरण दिए हैं, तो यहाँ जितने सारे भक्त हैं सब तो मन को कंट्रोल में लगे हुए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं भगवद गीता में कि मैं ही मन हूँ।
हाँ।
तो भगवान को हमें मदद करना चाहिए कि नहीं?
हाँ?
भगवान को हमें मदद करना चाहिए कि नहीं? ये भगवान अगर खुद ही मन है।
हाँ।
तो कंट्रोल में हो जाना चाहिए ताकि हम लोग भक्ति असस कर सके।
हाँ, इसलिए भगवान कहते हैं ददामि बुद्धि योगम तम, मैं देता हूं मन को खींचने के लिए बुद्धि देता हूं मैं बराबर।
परेशान क्यों करते हैं?
हाँ, वो है, अनंत काल से जिस पथ पे हम चलते आ रहे हैं उसके विपरीत पथ पे चलने से हमको क्लेश होता है, और कोई कारण नहीं क्लेश का, और कोई कारण नहीं। जिस पथ पे अगर हम चल रहे हो उससे विपरीत करने को कहा जाए तभी क्लेश हो रहा है, और कोई कारण नहीं है। ये बात मान्य है कि क्लेश है, मन को संयम रखना क्लेश है, बहुत क्लेश है। लेकिन आसान तभी हो जाए, इसलिए अंत में जो सोल्यूशन है, सब कुछ करने के बाद जो अंत का सोल्यूशन है मन को कंट्रोल करने का, वो व्यासदेव जी भागवतम में बता दिए। श्रद्धा से भगवान का लीला सुनना है, बार बार याद करना है, इससे मन वश में होगा। वो बाकी आप जो करोगे मन खा जाएगा आपको। काषायान्न च भोजनादि नियमान नो वावने वासतो व्याख्यानादथ वा मुनि व्रत बरात चित्तोद्भव क्षीयते किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया तीरेषु विक्रीडितो गोविंदस्य पदारविंद भजना रंभस्य लेशादपि। रूप गोस्वामी पद्यावली में एक श्लोक कहते हैं, काषायान्नच, कषाय वस्त्र पहनने से मन काबू में नहीं होगा, कषाय मतलब गेरुआ वस्त्र, सैफरन पहनने से, काषायान्नच भोजनादि नियमान, भोजन के नियम से भी नहीं होगा, नो वा वने वास तो, वन में रहने से भी नहीं होगा, व्याख्यानात, बड़े बड़े व्याख्यान से भी नहीं होगा, अथवा मुनि व्रत भरात, बड़े बड़े मौन व्रत लेके भी नहीं होगा, चित्तोद्भव क्षीयते, हृदय में काम वासना जो है इस सब से नहीं होगा, फिर कैसे होगा, किंतु स्फीत कलिंद शैल तनया, यमुना का बड़ा तीर है, कलिंद, कलिंद की जो पुत्री है यमुना, उसका बड़ा तीर है, तीरेषु विक्रीडितो, उसके तीर पे कोई तो खेल रहा है, वो जो खेल रहा है उस गोविंदस्य, उस गोविंद के पदारविंद भजना, उस पदारविंद के भजन, भजनारंभस्य, उस भजन के आरंभ के लेशाद, उस आरंभ के भी छोटे लेश से हो जाएगा, वो वास्तव में जो भजन है वो, मतलब सच में बिना आडंबर के मन को कृष्ण में यदि स्वाभाविक रूप से प्रीति हो जाए, उसका थोड़ा प्रीति भी उसका लेश हो जाए, बस काफी है। नहीं तो हमेशा परेशान करेगा। जड़ भरत कहते हैं इनको, राहुगण को, भ्रातृव्यमेनम तद्रवीर्यम उपेक्षया ध्येदितम अप्रमत्तः, गुरो हरे चरणोपासनास्त्रो जही व्यलीकम स्वयमात्म मोक्षम। भ्रातृव्यमेनम तद्रवीर्यम, ये मन बहुत कठिन है, उपेक्षया ध्येदितम अप्रमत्तः, इसको उपेक्षा करेंगे, कोई बोलेगा मैं निग्लेक्ट करूंगा मन को, अप्रमत्तः, पागल होके मारेगा तुमको बार बार, तुम्हारा वध करेगा मन, पागल होके इसको उपेक्षा करके भी नहीं चलेगा, कैसे चलेगा, गुरु हरे चरणोपासनास्त्रो, गुरु और हरि के चरण की उपासना के अस्त्र से, जही व्यलीकम, मारो इसे रहुगण, स्वयं आत्म मोक्षम, क्योंकि ये तुम्हारे आत्मा को खाने वाला है।
कृष्ण, अब जो संस्कार बारे में बोले हैं, जो कुछ बेटा बेटी का नामकरण करते ये तो संस्कार है, जो शादी करते ये भी संस्कार है, सब है। अच्छा, जो बेटा को, जो बाप जो बेटा को जन्म देते वो संस्कार करते, जब बेटा बड़ा हो जाते उसे पिता को नात मार के घर में निकाल देते, अच्छा ये क्या संस्कार है ना? नहीं,
ऐसा बहुत बार होता है कि भले ही पिताजी बहुत प्रयास करें, सब संस्कृत बेटे को संस्कार भी दे, तो भी बेटा निकाल देता है। इसका उदाहरण है धुंधुकारी। धुंधुकारी जो है उसके पिताजी ने, ये भागवत महात्म में आता है, धुंधुकारी जो बाद में प्रेत हो गया था और उसको गोकर्ण जी ने 7 दिन भागवत कथा सुना के मुक्त कराया था, ये धुंधुकारी जो है इसको पिताजी ने सभी संस्कार दिए थे, पर बाद में ये दुष्ट हुआ और इसने पिता और माता दोनों को घर से लात मार कर, पिता को भी अच्छे से उसने नहीं व्यवहार किया, तो इसमें किसी का ये दोष है ऐसा नहीं कह सकते हम, ये कर्मों का चक्र है, इसमें कोई कौन दोषी है कौन नहीं, जो भोगता है वो ही जानता है उसने क्या कर्म किया है क्या नहीं, इसलिए हम इसमें ये नहीं कह सकते। हमारा कर्तव्य जो है हमें ये करना चाहिए कि हमें संस्कार देना चाहिए, बाद में कोई कैसा निकल जाए वो हम नहीं कह सकते। तो माता पिता होते हुए हम क्या कर सकते हैं, बच्चों को अच्छा संस्कार दे सकते हैं, उनको उच्चतम शिक्षा देने का प्रयास कर सकते हैं, उसके आगे वैराग्य रखना चाहिए, आगे जो हो भगवान देख लेंगे, तो उसमें आसक्त होने से फिर बाद में दुख उठाना पड़ता है। माता पिता सबसे अच्छा संस्कार दे, सब अच्छे से सिखाए, बाद में पुत्र पुत्री कैसे हो इसका कोई कुछ नहीं कह सकता, कोई भक्त हो या नहीं हो, हिरण्यकश्यप के पुत्र हुए प्रहलाद महाराज जो भक्त थे, प्रहलाद के पुत्र हुए विरोचन जी जो फिर असुर हुए, विरोचन के पुत्र हुए बलि महाराज जो फिर भक्त हुए, तो ये कोई नहीं कह सकता कि कौन भक्त होगा और कौन असुर होगा।
धन्यवाद हरे कृष्ण।
हरे कृष्णा।
हरे कृष्ण।
तो मेरे पास एक क्वेश्चन है और एक कमेंट है। तो जैसे आप बताए कि दो स्त्रियों के बीच में झगड़ा हो रहा था, तो झगड़ा किस लिए हो रहा था और राजा के पास जाने के बाद वो झगड़ा सुलझाया या अभी तक चालू है?
वो झगड़ा हो रहा था पानी भरने को लेकर, वो पानी भरने को लेकर झगड़ा हुआ था। और उसके बाद जब राजा के पास गए तो बोले कौन वहां पे साक्षी था, तो बोले और कोई नहीं था, वहां एक पंडित बैठा था, जाओ उसको बुला ले आओ। तो श्री हर्ष बुलाए गए। श्री हर्ष बोले मैं तो कश्मीरी भाषा नहीं जानता, जो सुना उसको एज इट इज बोल देता हूँ, मैं इसका अर्थ नहीं जानता, उसको अनुपूर्वी कहते हैं। बोला मैं अनुपूर्वी सुना देता हूँ आपको, जो था एज इट इज सुना दिया, मतलब उतना उनका क्षमता था। फिर बाद में झगड़ा तो सुलझ गया क्योंकि उनके कहने से समझ में आ गया कि किसका फॉल्ट था। हाँ। तो झगड़ा सुलझ गया, लेकिन जाते जाते श्री हर्ष जो है उदयन को चैलेंज देकर चले गए, कल आऊंगा, कल इस सभा में आखिरी दिन है तुम्हारा, कल निवृत्त हो जाना, इस प्रकार बोल के गए, क्योंकि अपने पिताजी का बदला लेना था उनको।
हरे कृष्ण। एक समय राधा रमन महाराज प्रवचन किए थे और उन्होंने बताया कि गोपी भाव को कौन समझ सकते हैं, जो व्यक्ति संसार के जितने रिश्ते नाते हैं, संसार के जितने भौतिक रिश्ते नाते हैं, उसको जलाकर उसके चिता भस्म के ऊपर जो आनंद विभोर होकर नृत्य कर सकते हैं, वो व्यक्ति गोपी भाव को समझने के पात्र है।
ये बात ठीक है, इसमें प्राकृत भाव नहीं होना चाहिए, गोपी भाव समझने के लिए हृदय में प्राकृत भाव नहीं होना चाहिए, किंतु इसमें आश्रम का बंधन नहीं है। आश्रम, किसी भी आश्रम में रहते हुए व्यक्ति समझ सकता है, जैसे श्री राय रामानंद गृहस्थ आश्रम में रहते हुए बहुत अच्छे से समझ गए थे। तो इसमें आश्रम का बंधन नहीं है, और उसका यह अर्थ नहीं है कि जब तक व्यक्ति वैरागी ना हो जाए तब तक समझ नहीं सकता, उसका यह अर्थ नहीं। उसका बस यह अर्थ है कि संसार में रहते हुए भी जिसकी आसक्ति घर परिवार में ना हो वो जरूर अवश्य समझ सकता है। उसका उदाहरण ऋषभ देव जी पंचम स्कंद में देते हैं, ये वा मईषे कृत सौहृदार्थ जनेषु देहम भरवार्तिकेशु गृहेशु जायात्मजरातिमत्सु न प्रीतियुक्ता यावदर्थाश्च लोके। ये वा मईषे, जो गृहस्थ है मईषे मुझ ईश्वर में कृत सौहृदार था, मुझे प्रिय बना लिया है, जनेषु देहम बरवार्तिकेशु भले उन्होंने ये देह स्वीकार किया है, ये घर स्वीकार किया है, गृहेशु जायात मजरातिमत्सु घर स्वीकार किया है, पत्नी स्वीकार किया है, ना प्रीतियुक्ता पर उनकी वास्तविक प्रीति मुझ में है, यावद अर्थाश्च लोके इस संसार में बस शरीर चलाना है इसलिए रह रहे, इस प्रकार से जो है वो भी समझ सकते हैं, ऐसे ऋषभ देव जी बोल। तो सही बात है कि जब तक व्यक्ति आसक्ति रहित नहीं हो जाता तब तक नहीं समझ सकता, लेकिन श्रद्धा से सुनने का प्रयास सबको करना चाहिए, सबको करना चाहिए। जो लक्ष्य ही नहीं रखेगा वो तो लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा, इसलिए रूप गोस्वामी आशा बंद रखना चाहिए, मैं प्राप्त करूंगा अवश्य करूंगा, आशा बंधन रखना चाहिए।
हरे कृष्ण प्रभु जी, आपने बताया कि प्रचार तो सबका करना है, उसके बाद भजन भी चालू रखना है, तो भजन और भक्ति में क्या अंतर है थोड़ा बताइए।
महाप्रभु कहते हैं केहो करे आचार ना करे प्रचार, केहो करे प्रचार ना करे आचार, आचार प्रचार तुम्ही करे दुई कार्य, तुम्ही श्रेष्ठ गुरु तुम्ही जगतेरा आर्य। ये हरिदास ठाकुर महाप्रभु, ये सनातन गोस्वामी कोई तो कहते हैं हरिदास ठाकुर जी को। केहो करे आचार ना करे प्रचार, कुछ लोग भजन करते हैं सिर्फ, लेकिन प्रचार नहीं करते। केहो करे प्रचार, कुछ लोग प्रचार करते हैं, ना करे आचार, लेकिन उनका व्यक्तिगत भजन कुछ भी नहीं है। हे हरिदास ठाकुर, आचार प्रचार तुम्ही करे दुई कार्य, आचार और भजन, मतलब भजन और प्रचार तुम दोनों कार्य करते हो। तुम्ही जगत गुरु, इसलिए तुम जगत गुरु हो। तुम्ही जगत तेरा आर्य, म्लेच्छ नहीं हो, यवन नहीं हो, तुम जगत में आर्य हो। तो ये फर्क है कि भगवान के साथ अपना संबंध, खुद का संबंध स्थापित करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती है इसको भजन कहते हैं, और दूसरों को भक्ति में जोड़ने के लिए जो क्रियाएं की जाती है उसको प्रचार कहते हैं। लेकिन अच्छा प्रचारक वो बन सकता है जिसका भजन दृढ़ है। जिसका भजन दृढ़ नहीं है वो प्रचार तो कर लेगा पर उस प्रचार सीमित रहेगा, वो वैसा प्रचार नहीं कर पाएगा जैसे दृढ़ भजन वाले प्रचार करते हैं। इसका भजन दृढ़ रहता है वो सामने वाले को अच्छे से कन्विंस कर लेगा, बहुत अच्छे से, उसके बोलने से मात्र से या उसको देखने मात्र से सामने वाला समझ जाएगा। बाकी जिसका भजन अच्छा नहीं वो हजार तरह से समझाते रहे फिर उल्टे घड़े पे पानी है वो, ऐसा है। तो इस ठीक है, हर किसी को प्रयास करना चाहिए प्रचार का। ये हमारी जो संस्था है ये प्रचार प्रधान है, तो प्रचार प्रधान संस्था में हर किसी को प्रचार करना चाहिए। लेकिन ये जानना चाहिए कि संस्था प्रचार प्रधान होते हुए भी अर्थ ये नहीं है कि भजन बिल्कुल निग्लेक्ट करना है, ये गलती होगी। अपना भजन होना, कभी कभी भक्त लोग ये कहते हैं नहीं हमारे गुरु महान है, हम गुरु तारण कर देंगे, हम प्रचार करेंगे और गुरु तारण कर देंगे। तो ऋषभ देव जैसे महान गुरु होते हुए भी लोगों का पुनः जन्म देखना पड़ा है। चाहे गुरु महान हो, महानतर महानतम गुरु हो, महानतम गुरु साक्षात भगवान श्री हरि ऋषभ देव बन के आपके गुरु और पिता बन के आवे, फिर भी भरत महाराज के रूप में आपको पुनर्जन्म लेना पड़े। इसका अर्थ यह है कि भजन करना सबके लिए व्यक्तिगत कार्य है, सबको करना चाहिए। हाँ एक माइक पे मुझे सुनाई दे।
आपने कहा कि आचरण और प्रचार दोनों महत्वपूर्ण होता है, और यदि हम आचरण करके प्रचार करते हैं तो ज्यादा प्रभावशाली होता हाँ। है। लेकिन इसी प्रसंग में देखेंगे कि हिरण्यकश्यपु के प्रवचन का असर पड़ा, वो जो स्त्रियां थी हिरण्याक्ष की पत्नियां थी, उनकी माता थी, उनका शोक दूर हुआ हाँ। और
शोक तो, उनका शोक दूर हुआ पर उनका असर उनके भजन पे नहीं पड़ा, वो भक्त नहीं बने, रहे तो असुर ही। वो सबके सब भाई बंधु सपरिवार असुर हुए सबके सब। तो वो इसलिए पिछली बार जब भी कहा था तभी मैं एक श्लोक बोला था, पुराणांते श्मशानांते मैथुनांते च यामति सामति सर्वदा चेत स्यात् को न मुच्येत बंधनात्। पुराणांते बड़े प्रवचन के बाद, श्मशानांते श्मशान जाने के बाद, मैथुनांते और मैथुन करने के बाद, यामति जो वैराग्य हो जाता है व्यक्ति को, सामति सर्वदा चेत स्यात् यदि वो परमानेंट हो जाए वो वैराग्य, कोना मुच्येत बंधनात् कौन मुक्त नहीं होगा, सभी मुक्त हो जाएंगे। यदि पुराण सुनने के बाद जो वैराग्य होता है वो यदि शाश्वत हो जाए तो सभी मुक्त हो जाएंगे, लेकिन वो नहीं होता क्योंकि माया की दो शक्ति रहती है, आवरणात्मिका और प्रक्षेपात्मिका। तो जैसे ही हम सुन के बाहर निकलते हैं तो माया की आवरणात्मिका शक्ति फिर काम करने लगती है और हमें ढक देती है, और फिर प्रक्षेपात्मिका नीचे खींचने लगती है, धीरे धीरे नीचे खींचते हुए ले जाती है हमको।
You said that Shriharsh from Ujjain, he was Mayabadi, and this Udayan was Vaishnava, and because he was Vaishnava, he was, he defeated him.
Initially, Udayan had come to Ujjain on Digvijay, because till today Udayan's book is there. It is called Atma Tattva Vivek. It's a very excellent book on Nyaya. It will explain to you why the soul exists, why you should believe in God. Everything is very well explained there. But Shri Harsh, he got spited by Udayan's behavior, because Udayan defeated Shri Harsh's father. Shri Harsh decided, I'll take revenge. And in order to take revenge, he became such a Mayavadi, I'll deny everything including the existence of God. So Shri Harsh wrote a book, Khandana Khanda Khadyam. Ye pustak likha.
So my question is that in the case of Rupa Goswami, Sanatana Goswami, when that Mayavadi Pandit came to defeat them, they said, you take the...
Take certificate. Yes.
But Jiva Goswami didn't just leave him. And Jiva Goswami fought that, he was chastised. So, see, in the case of Udayan, he just wanted to defeat him.
Yes.
Although he was a Vaishnava.
Yes.
But why Rupa Goswami and Sanatana Goswami just simply said, you take the
credit? Why they said, because it given in Narad Bhakti Sutra, Vado Navalambya. Narad Bhakti Sutra mein 74th hai sutra, 74th. Vado Navalambya. Vad ka avalamban nahi kare. वाद का शेल्टर ग्रहण नहीं करें. उसका कारण अगले सूत्र में बताया 75वें. बाहुल्यावकाशात अनियतत्वाच्च. इसका कोई अंत नहीं है, बढ़ता जाता है. ये वाद के शरण न ले, इसका कोई अंत नहीं है, ये बढ़ता जाता है. सो दैट इज व्हाट इज सेड इन नारद भक्ति सूत्र. रूप गोस्वामी अंडरस्टैंड्स इट. He also wrote in Bhakti Rasamrit Sindhu. Bahu Grantha Kalabhyas Vyakhya Vadavi Varjanam. This is given in Bhakti Rasamrit Sindhu. Bahu Grantha Kalabhyas Vyakhya Vadavi Varjanam. Vadavi Varjanam. Ye argumentation nahi karna hai. Argumentation karne se kuch siddh nahi hoga. Tarko Pratishtha. Tark se janne yogya vastu nahi hai Bhagwan. Ye Vedant Sutra mein diya hai. Tarko Pratishtha. Tark se janne yogya nahi hai. रूप गोस्वामी ये भी कहते हैं कि कुशलैर अनुमात्र भी अन्यथैर उपपद्यते. ये भर्तृहरि का श्लोक रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में कोट करते हैं. कोई सिद्धांत यदि हम स्थापित कर भी ले, हमसे कुशल व्यक्ति आके उसको तोड़ सकता है. इसलिए ये तर्क से नहीं जानना होगा. यदि वास्तविक सत्य को जानना है तो शब्द प्रमाण से जानना होगा. सिर्फ और सिर्फ शब्द प्रमाण से जानना, और कोई प्रमाण से नहीं जानना होगा. ये कारण है. और जो जीव गोस्वामी वहां तर्क किए, वो पंडित ने बोला था, आप ऐसा क्यों बोले कि भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्तते. तो भुक्ति और मुक्ति को पिशाची क्यों बोल दिया आपने. तो जीव गोस्वामी जाके बोले, क्या बोले तुमने मेरे गुरु को, भुक्ति मुक्ति स्पृहा यावत पिशाची हृदय वर्त, क्या गलती है इसमें. ऐसे जीव गोस्वामी, क्या गलती है इसमें. तो वो पंडित बोले कि इसमें भुक्ति और मुक्ति को पिशाची बोला गया. तो जीव गोस्वामी बोले, यदि मैं इसका खंडन कर दू तो. यही खंडन कर दू तो बोलो. तो वो पंडित बोले, कैसे. पिशाची ये विशेषण भुक्ति और मुक्ति पे नहीं, स्प्रिहा पे लगाया गया है. भुक्ति और मुक्ति को नहीं बोला गया है, भुक्ति मुक्ति की जो स्प्रिहा है, जो इच्छा है, उसको पिशाची बोला गया है. अब बोलो, अब क्या दोष है श्लोक में. तो पंडित चकित हो गए. रूप गोस्वामी के पास आके बोले, ये कौन है आपको पंखा दे रहा था, वो कौन है ये. नहीं कुछ नहीं, भतीजा है मेरा. बोले, बहुत विद्वान है ये तो. मैंने जो बात कही तो उसने खंडन कर दिया इसका. मुझे क्षमा कीजिएगा, मैं आपसे ऐसा कहने आया, एक्चुअली आपका श्लोक ठीक है, आप उसको बदलिएगा मत. तो रूप गोस्वामी बोले, क्या खंडन किया उसने, क्या बोला वो. तो बोला, मैं कह रहा था कि भुक्ति और मुक्ति पिशाची है, पर उसने बोला ये तो स्प्रिहा का विशेषण है. तो रूप गोस्वामी बोले, अच्छा उससे जो बाल चपलता हो गई उसको क्षमा कर दीजिएगा, उससे जो बाल चपलता हो गई उसको क्षमा कर दीजिएगा, बाद में जीव गोस्वामी को बुलाए और उनको बोले कि इस तरह से वृंदावन में नहीं रह सकते तुम, आज ही बाहर चले जाओ। तो जीव गोस्वामी उस समय उनको बहुत कष्ट हुआ यह सुन के, लेकिन बाद में फिर जीव गोस्वामी जी को वापस भी बुलाया गया। लेकिन एक चीज अच्छी भी हुई कि रूप गोस्वामी ने फिर जीव गोस्वामी को टीका लिखने के लिए कह दिया, इस पे टीका लिखना तुम, क्योंकि तुम एक्चुअली तुम समझे थे कि मैंने स्प्रिया के लिए बोला था, पर तुमने उसको अच्छे से बताया नहीं दूसरों को। रूप गोस्वामी ने क्या किया, रूप गोस्वामी ने बोला कोई भले ही गलती निकाल रहा हो, सीधा बोला ठीक है अच्छी बात धन्यवाद, ऐसा बोल देना धन्यवाद, ये बोल देना ठीक है। इसे भागवतम में दिया है कि यदि कोई कुछ सुझाव लेकर आए तो अनुमोदन कर देना चाहिए, हाँ ठीक है ओके। कभी कभी लोग कुछ नेगेटिव चीज लेके आते, प्रभु जी मैंने कुछ सुना है आपके बारे में, मैंने कुछ सुना है आपके बारे में, तो कुछ मैंने सुना आपके बारे में ये कंप्लेंट है, तो ठीक है प्रभु जी कोई बात नहीं, और आप क्या, आप कैसे, आप कुशल है, आप ठीक है, बाकी आपका सब अच्छा चल रहा है, बस इतने में ही शांत हो जाएगा, बस और कुछ नहीं होगा। रूप गोस्वामी ने वही किया, रूप गोस्वामी को यह पसंद नहीं आया जीव गोस्वामी बाकी क्यों तुमने ये क्यों किया, ये इससे भक्ति कम होती है, वही कारण है और कुछ नहीं। वो श्लोक भी है इधर 15वें अध्याय में, गृहस्थ को ऐसे, गृहस्थ के लिए बोला गया है इस तरह से रहना चाहिए, कोई पति पत्नी रिलेटिव भाई बंधु समाज के कोई लोग सुझाव लेके आ जाए, कुछ लोगों को ये मन रहे, कुछ ओपिनियन देते रहते दूसरों को, इसे कहते हैं इंडिया में बहुत फ्री में ओपिनियन देते लोगों को, तो कोई फ्री का ओपिनियन लेकर आ जाए चानु मोदेत, ठीक है प्रभु आप कैसे है, आप अच्छे हैं ना, बहुत अच्छा, इस तरह से करना चाहिए, इससे कोई किसी को कष्ट नहीं होगा, किसी को कोई कष्ट नहीं होगा। हाँ यदि उसमें सच में कुछ ग्रहण करने लायक है तो वो ग्रहण कर लेना चाहिए, ठीक है धन्यवाद, जय श्री प्रभुपाद, हरि बोल।